आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की असीम हेतु की कृपा के साथ प्रातःकाल की इस पावन बेला में बैठकर श्रुति के इन पावन मंत्रों के द्वारा स्वस्वरूप पर विचार कर रहे थे। ईशावास्य उपनिषद के 12वें मंत्र को लेकर कल विचार कर रहे थे, अंधतम प्रवशन्ति ये संभूति मुपाशते ततो भूय इवते तमो य उ संभूत्यारथ गुंगरथ। जो लोग असंभूति की उपासना करते हैं वह तो अंधकार को प्राप्त होते हैं, और जो संभूति की उपासना करते हैं वह उससे भी गहरे अंधकार को प्राप्त होते हैं। संभूति और असंभूति, व्यक्त प्रकृति और अव्यक्त प्रकृति, व्यक्ता व्यक्त रूप से जो जगत की और ईश्वर की, व्यक्त प्रकृति यह जगत, अव्यक्त प्रकृति जिसको इसको चलाने वाला इसका कारण है, कार्य रूप जगत, कारण रूप ईश्वर, जो कार्य कारण को ही समझकर निरंतर इसी के साथ कार्य रूप जगत कर्म है, कारण इसकी उपासना है, ईश्वर है, जो यह एक दूसरे के समुच्चय साथ साथ, एक दूसरे के पूरक नहीं, एक दूसरे के साथ, ईश्वर कारण से कार्य अलग नहीं, कार्य से कारण अलग नहीं, कार्य कारण दोनों साथ रहकर जो इसे ही, इसकी ही उपासना में लगे रहते हैं, और वह लोग इस अंधकार को प्राप्त होते हैं। माने कारण रूप ईश्वर, ईश्वर की उपासना के द्वारा हमें अणिमा गरिमा लघिमा महिमा प्रतिष्ठा जैसी सिद्धियां प्राप्त होंगी, अमुक अमुक भोगों की प्राप्ति होगी, इसके करने से उपासनादि सुख, इससे हमें यह लोक से लेकर स्वर्गादि लोक ब्रह्म लोक पर्यंत तक की उपासना को की प्राप्ति होगी। और ऐसी चाह करके जो निरंतर इसके फल में लगे रहते हैं, प्राप्ति में लगे रहते हैं, वह लोग यद्यपि कर्म से जड़ता की प्राप्ति होती है, कर्म होने के बाद फलित तो उसका मृत्यु है, और जो ऐसे जड़त्व को पकड़ के रखते हैं, कर्म को पकड़ के रखते हैं, उनसे चेतन की उपेक्षा होती रहती है, अर्थात कारण की उपेक्षा करते हैं, समष्टि की उपेक्षा करते हैं, और जो समष्टि को पकड़ते हैं वो व्यष्टि रूप कर्म की उपेक्षा करते रहते हैं। बोले इस प्रकार की अपेक्षा और उपेक्षा का रहना यह भी उचित नहीं। इसलिए जो लोग अन्य देवाहुर बाहु संभवात दाउन्य रूप संभवात, अर्थात श्रुति अगले मंत्र में कहती हैं, इति सुश्रुणाम धीराणाम ये न द्विचक्षसे, जो आदि परंपरा से विद्वानों के द्वारा जैसा बताया जा रहा है, विद्वानों के द्वारा, बुद्धिमानों के द्वारा जो बताया गया, सुना गया, उनकी जो व्यवस्था है, कि इन दोनों को एक दूसरे का समन्वय समुच्चय जानते हुए जो ऐसा आग्रह करे, आग्रह पूर्वक इनको छोड़ना, जैसे कि हमको ये सारी क्रियाएं कैसी होनी चाहिए, बोले बिल्कुल सहज होनी चाहिए, इसमें कोई आग्रह और दुराग्रह नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहती हूं, जीवन न तो आग्रह से भरा होना चाहिए न दुराग्रह से भरा होना चाहिए। हम ऐसा करेंगे ऐसा कोई आग्रह भी नहीं, और ऐसा कोई दुराग्रह नहीं, लड़ाई नहीं कि बलात् हठात् अपने आप से मुझे ये करना ही नहीं है। जो करें वो समझ करके करें, करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु करने से पहले समझो तो सही कि आप करने क्या जा रहे हैं, और जो करने जा रहे हैं आप वो कर रहे हैं या वो हो रहा है। सहज रूप से प्रकृति अपने सहज स्वभाव के साथ बरतती है ना, प्रकृति अपने स्वभाव से सहज रूप से प्रकृति चल रही है, उसके में कोई बिना किसी रुकावट के अपनी सहजता के साथ प्रकृति काम कर रही है। उसकी इस सहज गतिशील क्रिया को हम देखें समझें, और उसके साथ कोई हमारा आग्रह दुराग्रह नहीं रहने। महात्मा का जीवन इतना सहज होता है कि बहुत पहले हरिद्वार में ही थोड़ी सी ये जो बातें हैं संत के जीवन में कितनी सहजता से होती हैं, एक उदाहरण पर मुझे स्मरण हो रहा है कि कनखल में ही हमारे सन्यास रोड में ही थोड़ा सा दो चार आश्रम छोड़ के आगे एक संत रहा करते थे जिनका नाम प्रभात भिक्षु था। बड़े अच्छे महात्मा थे, ब्रह्मनिष्ठ। उनकी बस्ती राम की पाठशाला में रहा करते थे, न्याय के बड़े अच्छे महात्मा थे। उनके पास कोई भी संत, वो अपने आप से कुछ बोलते नहीं थे, किसी को कोई उपदेश नहीं करते थे, कोई प्रवचन नहीं करते थे। उनके पास कोई जाए और कोई विचार उनके आगे रखे आध्यात्मिक जिज्ञासा को लेकर, कोई संत उनके पास जाए कुछ पूछें, तो वो हमेशा उसका जो सही उत्तर होता था वो बात बता देते थे, पर कभी किसी से कोई आग्रह नहीं करते थे कि जो हमने कहा है उसे तुम करो, ऐसा ही करो, ऐसा कभी किसी को नहीं कहते। ऐसा करना चाहिए, सहज रूप से बता, आग्रह नहीं था उनके जीवन में ऐसा। और हम अपना आग्रह रखते हैं, तुमको ऐसा करना चाहिए, नहीं करोगे तो तकलीफ होगी, दुख होगा। तो जीवन को सहज बनाने के लिए हमेशा जीवन आग्रही जीवन न हो। आग्रह होगा तो कुछ अपेक्षाएं भी होंगी और कुछ उपेक्षाएं भी होंगी। ये सारी चीजें राग और द्वेष के कारण आती हैं नारायण। जहां जहां राग होगा, अपेक्षाएं होंगी, राग होगा, तो निश्चित रूप से राग के साथ में जुड़ा रहेगा द्वेष। और राग और द्वेष जब तक बुद्धि के अंदर ये रागात्म व्रति, राग में व्रति रहेगी, द्वेष में व्रति रहेगी, तब जो व्रति राग और द्वेष में रहती है वो व्रति ब्रह्म में कहां रहेगी। राग से अपना पराया दिखाएगी, राग से अपनत्व होगा और द्वेष से दूरी होगी, अलग करेगी। तो वृत्ति किसमें रहे, बोले न राग में रहे न द्वेष में रहे, दोनों से अलग जब वृत्ति निष्पक्ष होगी तभी तो वो ब्रह्म में, सत्य में, ज्ञान में स्थिर हो पाएगी। जिस काल में वृत्ति में राग और वृत्ति राग और द्वेष से शून्य हो जाती है, उस समय वृत्ति स्व में रहती है, स्व का प्रकाश होता है। इसलिए जीवन में अभ्यास किस बात का करना है? कम से कम इतना करो कि किसी समय तो ऐसा समय आपके पास होना चाहिए जिस समय में आपके भीतर न कोई राग हो और न कोई द्वेष हो, कोई द्वंद्व नहीं, निर्द्वंद, कोई झगड़ा नहीं, कोई खटपट नहीं, कोई टंटा नहीं, बिल्कुल शांत दांत भाव से आप अपने आप में रहने का अभ्यास तो कीजिए। जब इसका आप अभ्यास करेंगे तो जीवन में जो जगत कार्य रूप है इसका कारण इष्ट, कारण से कभी कार्य अलग नहीं होता, कार्य से कभी कारण अलग नहीं होता, कार्य कारण रूप जगत ईश्वर से चल रहा है और चलता रहेगा। ये आदि परंपरा से जो चल रहा है, हम इसमें इसको केवल अपनी वृत्ति के द्वारा, उपनिषद यही कहती है कि जो कार्य ब्रह्म की उपासना और उसके फल के साथ बल बताया गया है, अव्यक्त उपासना जो ईश्वर की उपासना और उसका फल बताया गया है, इन दोनों में जैसा बुद्धिमान लोगों से सुना है, सुना यही है कि अव्यक्त प्रकृति व्यक्त रूप जगत है और अव्यक्त प्रकृति जिसे हम ईश्वर कहते हैं वह इसका नियंता है, वह इसका पालक है, वह इसका रक्षक है और उसी ईश्वर से की उपासना की, उसी की ये व्यवस्था की हुई है और इस व्यवस्था की, ईश्वर की व्यवस्था से ये सब कुछ चल रहा है। परंतु हम चाहते हैं ये सब हमारी व्यवस्था भी इसमें कुछ होनी चाहिए, हम इसको व्यवस्थित करें, हम अपनी व्यवस्था इसमें निश्चित करना चाहते हैं। परंतु याद रखना, प्रकृति ने, ईश्वर ने जिसको जिस तरह से किया है वो उसी तरह से चलेगा। और ये दोनों कैसे चलते हैं? बोले साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे, ईश्वर से के बिना व्यक्त के बिना अव्यक्त नहीं, अव्यक्त के बिना व्यक्त नहीं, प्रकृति और प्रकृति के साथ ईश्वर, इन दोनों का साथ है। जैसे दिन के साथ रात है, रात के साथ दिन है। कभी कब ऐसा हुआ कि जब हमेशा दिन ही रहा हो और उसके साथ रात न हुई हो? और कब ऐसा हुआ है कि जब रात ही रात रही हो उसके साथ दिन न रहा हो? ये प्रकृति का एक नियम है यार, व्यवस्था है एक ऐसी कि दिन के साथ रात, रात के साथ दिन, कार्य के साथ कारण, कारण के साथ कार्य, प्रकृति के साथ ईश्वर, ईश्वर के साथ प्रकृति, ये एक व्यवस्था जो इन दोनों को ठीक से समझता है उसके लिए अगले मंत्र में कहा, संभूति च विनाशाय च यदस दोयम भयम सह विनाशेन मृत्युत्रवा संभूत्या अमरत्वम अनुपश्यते। अर्थात जो इस असंभूति कार्य रूप और इन दोनों को साथ साथ में जानते हैं, कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार करके असंभूति माने प्रकृति को विलय करते हुए वो आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, जो इन दोनों से अपने आप को, अपनी वृत्ति को अलग कर लेते हैं, जो केवल व्यक्त अव्यक्त रूप ईश्वर की उपासना में ही लगे रहते हैं और कार्य रूप जगत की पूर्ति के लिए, सरल बहुत सीधे शब्दों में इसका अर्थ किया जाए तो यही होगा कि हम सब लोग, मैं कई बार कहती हूं कि हम मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, भगवान को फूल भी चढ़ाते हैं, सब करते हैं, पर करते क्यों हैं? इसलिए करते हैं कि हे भगवान, ये जो मानते देखते क्या है इस जगत को, और इस जगत में, इस संसार में, हमारे परिवार में, हमारी आवश्यकताओं में जो हमको कमी नजर आती है, उस कमी को, जो जगत में कार्य रूप जो है जगत है, इसमें हमें जो कमी आती है, इस कमी की पूर्ति के लिए, जैसे अंदर प्यास लगती है तो बाहर से पानी पीकर हम प्यास बुझा लेते हैं, भूख लगती है तो भोजन लेकर के हम भूख मिटा लेते हैं, उसी प्रकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईश्वर, आवश्यकता क्या, जो हमारी सांसारिक आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम ईश्वर को, ईश्वर से उसकी प्राप्ति पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, वो अप्राप्त जो है उसे प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हम भगवान की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। हमारा लक्ष्य क्या हुआ? लक्ष्य हुआ कार्य रूप जगत संसार, और साधन क्या हुआ? ईश्वर। ईश्वर को साधन बना करके हम कार्य रूप जगत की पूर्ति करना चाहते हैं, ये हमें पूरा हो, ये हमें मिले, अप्राप्ति की प्राप्ति हो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें संसार में जो कुछ प्राप्त है, ये सब मेरा स्वास्थ्य, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा आदर सम्मान मान, जो कुछ भी मुझे मिला है, बस भगवान इसकी आप रक्षा करना, ये कुछ खराब न होने पाए, ये कुछ बिगड़ने न पाए, इसमें कोई विकृति विकार न आए, उसके लिए हे ईश्वर आप मेरी रक्षा करना, मेरे पर कृपा करना, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। पर ईमानदारी से बताओ, ये चीज हमारी प्रार्थना करने से कुछ रुकती है? कुछ ठहराव आता है उससे? कुछ बच जाता है उससे? ईमानदारी से बताओ, कुछ नहीं हो। काल के नियम के, प्रकृति की, ईश्वर के नियम के अनुसार जो व्यवस्था है वो तो उसी रूप से चलती है। हमने बहुत चाहा, बहुत चाहा कि हम अपनी जवानी को भविष्य की ओर ले चलें, परंतु किसी का ये बात पूरी हुई? हम हमेशा जवान दिखाई दें, सुंदर दिखाई दें, उसके लिए हमने बड़ी चेष्टाएं की, पर धीरे 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 शरीर तो पीछे बढ़ता चला गया, निकलता चला गया। चाह तो बहुत था पर कुछ बचा नहीं। इसी तरह से प्रत्येक वस्तु ये प्रकृति के, ईश्वर के साथ, व्यवस्था के साथ चल रही है। ऐसा जान करके, समझ करके जो व्यक्ति इन दोनों की चिंता किए बिना, इन दोनों में अपने वृत्ति को लगाए बिना, वह उस वृत्ति को, इस राग और द्वेष से, इनसे हटा करके अपनी वृत्ति को निष्पक्ष करके अपने भीतर, अपने आप में, अपने मैं को देखता है, मैं के का अनुभव करता है। वो मैं स्वरूप जो मेरा अपना आपा है, आत्मा है, उसके चिंतन में जो लोग रहते हैं और प्रकृति को ऐसा समझ करके सहज उसका बलात् हटात त्याग नहीं करते, उसके प्रति उनका आकर्षण नहीं रह जाता। जगत रहता तो है परंतु जगत के प्रति जो आकर्षण है वो समाप्त हो गया, और इस प्रकार सहज रूप से जो ऐसा कार्य करते हैं, भगवान उपनिषद कहती है कि वो मृत्यु से पार कर जाते हैं। बोले संभूति से और असंभूति से। संभूति ईश्वर, असंभूति ये जो प्रकृति है, जगत है, इससे अपने आप को पार कर लेते, मृत्यु त्रवा अर्थात मृत्यु से अमृत के फल की प्राप्ति कर लेते हैं, यह संभूति और असंभूति नामक ईशावास्य उपनिषद में ये जो तीन मंत्र हैं, इन तीनों मंत्रों के द्वारा कार्य और कारण रूप ईश्वर के विषय में बताया गया। इससे पहले जो तीन मंत्र थे विद्या और अविद्या के रूप में, वह हमें कर्म, जिसे विद्या और अविद्या कहकर बताया, वही इन तीन मंत्रों में संभूति और असंभूति के रूप से समझाती है। और ताकि हम ईश्वर और जगत को ठीक से जाने, ठीक से समझें और ठीक से इसे समझने पर अपने आप को समझ, अपने को समझने के लिए, अपने मैं को जानने के लिए हमें इन्हें जानना जरूरी है। और जो लोग इसे जाने बिना, केवल इसे ठीक से समझे बिना, केवल ये आग्रह पूर्वक हमको कर्म में निपट करना है ऐसा समझ करके कर्म का त्याग करके बैठ जाते हैं, हमको कहीं ऐसे ये सब मिथ्या है, ये कर्म बंधन का कारण है, ऐसा आग्रह करके जो लोग कर्म का त्याग करके बैठ जाते हैं नारायण, वह व्यक्ति भी उस आत्म कल्याण से वंचित रह जाते हैं। इसलिए कर्म न कर्म छोड़ना है न उपासना छोड़नी है। और ये उपासना करना ठीक नहीं, ये तो देवो उपासना है, इससे भोगों की प्राप्ति होती है, स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होती है, सिद्धियों की प्राप्ति होती है, इसलिए ईश्वर उपासना नहीं करनी। ऐसा आग्रह करके कर्म छोड़ के, उपासना छोड़ करके ज्ञान की सिद्धि के लिए हम बैठ जाएं, उससे हमें तत्व सिद्धि होती हो सो बात भी नहीं है। इसलिए जीवन में न कुछ छोड़ना है और न कुछ पकड़ना है, जो जैसा है उसको वैसा समझना है, न तो कुछ छोड़ना है और न कुछ पकड़ना है। महात्मा बुद्ध से पूछा था ना किसी ने, महाराज आपने ये स्थिति अवस्था को प्राप्त करने के लिए आपने अपने जीवन में क्या छोड़ा और क्या पकड़ा? उन्होंने उत्तर दिया, ना मैंने कुछ छोड़ा और ना मैंने कुछ पकड़ा। ये छोड़ना और पकड़ना जो था, जिसे हम सोचते हैं कि हमने पकड़ लिया, और जिसे हम सोचते हैं ने छोड़ लिया, जिसे छोड़ना कहते हैं वो पहले से ही छूटा हुआ ही था। ना कुछ पकड़ना है ना कुछ छोड़ना है, केवल समझना, जो जैसा है उसको ठीक ठीक समझ में आ जाए। जब प्रकृति कर्म और उपासना को ठीक समझेंगे तो तभी स्वरूप को, ज्ञान को भी समझने के लिए, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध हुए बिना वह तत्व समझ में नहीं आता, ये भी बात है। जब तक अंतक और उपासना के बिना अंतःकरण की शुद्धि कैसे होगी? अंतःकरण शुद्ध भी तो उपासना से ही होगा। इसलिए आप ईशावास से सुन करके आज से आप कहें कि बस देवो उपासना बंद, मुझे कोई पूजा नहीं करनी, कोई पाठ नहीं करना, कोई ध्यान नहीं करना, ये सब ईश्वर उपासना है, इससे तो केवल वो होती, ऐसा करके बैठ जाए, बोले नारायण ये भी गलत बात होगी। यह भी तो एक उपासना ही है। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है मैं ब्रह्म हूँ, ये ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से वह ब्रह्म की उपासना तो वो भी है, ये एक साधन तो वो भी है। तो इसलिए साधन मात्र का त्याग कर देना, छोड़ के बैठ जाए हम, ये भी बात नहीं है। परंतु श्रुति हमें ये कहती, यही साधन नहीं है, उपासना ही ज्ञान की प्राप्ति के लिए, न कर्म और न उपासना। कर्म उपासना से परे ज्ञान है, और ज्ञान सर्वोपरि है। और ज्ञान भी कौन सा ज्ञान? जो परोक्ष या उपासना के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो परोक्ष ज्ञान है, और उपासना के द्वारा प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है वो परोक्ष है, परंतु हमें अप्रोक्षानुभूति करनी। और अप्रोक्षानुभूति अप्रोक्ष ज्ञान किससे? बोले अप्रोक्ष वही होता है जो प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष के बिना अप्रोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए जो प्रत्यक्ष है उस प्रत्यक्ष को जानने के लिए न उपासना है न कर्म है। जैसे अंधेरे को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मानो एक गुफा के अंदर बहुत सदियों से, बहुत वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से गहरा अंधकार बसा हुआ है, और उस अंधकार को उस गुफा से हम दूर करना चाहें, उसके आगे बैठकर यज्ञादि अनुष्ठान करने लगे, तो क्या यज्ञादि कर्म के द्वारा वो अंधेरा दूर होगा, समाप्त होगा? बोले नहीं। और उससे बाहर बैठ करके हम देवोपासना करने लगे, ईश्वर की आराधना करने लगे, उपासना करने लगे, उससे दूर होगा? बोले उससे भी दूर नहीं होगा। उस अंधकार को दूर भगाने के लिए प्रत्यक्ष केवल एक ही है। प्रत्यक्ष यही है कि हम हाथ में रोशनी लेकर, मशाल लेकर जैसे गुफा के भीतर पहुंचेंगे, तत्क्षण बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए, वो अंधकार का लोप हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। उसी तरह से जो प्रत्यक्ष है, मैं प्रत्यक्ष है, आत्मा प्रत्यक्ष है, परंतु उसकी अप्रोक्ष रूप, अप्रोक्षानुभूति, अप्रोक्ष रूप से उसका ज्ञान कैसे हो? बोले वो तो केवल महावाक्य के द्वारा ही होगा। उसके लिए महावाक्य ही केवल है, केवल महावाक्य। और वो महावाक्य, जैसे हम इस सभा में बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति जिसके लिए बहुत सुना हुआ है, वो यही आकर बैठा हुआ, हमारे पड़ोस में बैठा, हम नहीं जानते, और नहीं जानते हम में से किसी ने एक ने कह दिया ये अमुक व्यक्ति है, ये बताने वाला जो वाक्य, ये अमुक व्यक्ति है, ये वाक्य के द्वारा ही तो बताया गया, केवल वाक्य, केवल वाक्य। और वह तो प्रत्यक्ष ही था, और उस प्रत्यक्ष को ही तो परोक्ष रूप से हमने पहचाना, किसके द्वारा? वाक्य के द्वारा। तो ये ब्रह्म विद्या महावाक्य है। इस ब्रह्म विद्या रूपी उपनिषद के महावाक्य से ही उसको हम, जो प्रत्यक्ष है, उसको उसको हम जान पाएंगे नारायण, परोक्ष रूप से, अप्रोक्ष रूप से, परोक्ष, प्रत्यक्ष के बिना अप्रोक्ष हो ही नहीं सकता। इसलिए उसके लिए तो केवल एक शब्द है, वाक्य है, और वो वाक्य में, उस वाक्य से हमारी वृत्ति का, वृत्ति में वो वाक्य कब, कहां और किस समय, वो वृत्ति में वो वाक्य, ब्रह्माकार जो वृत्ति कहते हैं, वो वाक्य से उस वृत्ति का साक्षात्कार होगा, ये कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। जब तक वृत्ति राग में, द्वेष में रहेगी, तब तक उस वाक्य के साथ कैसे इस वृत्ति का साक्षात्कार होगा? नारायण, राग में फंसी हुई है, द्वेष में फंसी हुई है, और जो निरंतर, इसीलिए कहा कि ये उपासना किसके द्वारा है? उपासना से ये वृत्ति की परतें हटे, एक एक करके उस वृत्ति को हम, जो निरंतर बहिर्गमन कर रही है, जो चैतन्य वृत्ति है, जो चेतन है, जिस चेतन का दिन रात इंद्रियों के द्वारा ज्ञानेन्द्रियों से कर्मेन्द्रियों से जो निरंतर बहिरता की ओर बाहर गमन कर रही है, उस वृत्ति को पहले अपने भीतर स्थिर तो करो। जो इंद्रियों के गोलोक से, इंद्रियों के माध्यम से हमारी वृत्ति यजाग्रतो दूर मुदेती, सो के उठे और उसने के साथ जो हमारी वृत्ति हमसे दूर निकल गई, मैंने कहां निकल गई, इस दृश्य में, इस शरीर में, जो वृत्ति जागने पर, जागते हैं सो के उठते हैं, उठने के साथ ही हमसे दूर चली जाती है। तत् सुप्तम, जब हम सोते हैं तो वो हमारी वृत्ति कहाँ आती है, बोले हमारे अंदर आती है, जो जागने पर चली जाती है और सोने पर पास आ जाती है। तत् जो सोते वक्त अपने अंदर रहे और जागते वक्त हमसे दूर चली जाए, ऐसी वृत्ति को लौटा करके लाओ, अपने पास लाओ, अपने भीतर लाओ। और अपने भीतर लाने के लिए क्या करना होगा, जो इंद्रियों के द्वारा वृत्ति का व्यवहार चल रहा है, उस व्यवहार से उस वृत्ति को हटाना होगा। जो वृत्ति दिन रात इंद्रिय व्यवहार में लगी हुई है, यदि वो वृत्ति इंद्रियों के व्यवहार, इंद्रियों के साथ न लगे तो इंद्रियों का कोई व्यवहार ही न हो। जिस वृत्ति के व्यवहार से, इंद्रियों के साथ जब व्यवहार करती है, तो तभी हमें रूप का ज्ञान होता है, शब्द का ज्ञान होता है, स्पर्श का ज्ञान होता है, गंध का ज्ञान होता है। यदि वो न हो तो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि का किसी का ज्ञान न हो। और जब वही वृत्ति इंद्रिय ज्ञान से हट करके इंद्रियों के साथ जुड़ी है, उससे उस वृत्ति को जब भिन्न करके पहचानते हैं, अलग करके पहचान की जाती है, तो तब वही वृत्ति, उसी वृत्ति में जो वृत्ति चेतन है, जो वृत्ति महावाक से बनी हुई है, महावाक्य के साथ जब उस वृत्ति का साक्षात्कार होता है, महावाक्य से जैसे वो आंख से मिलती है तो रूप का दर्शन कराती है, और वैसे ही वो वृत्ति जब महावाक्य के साथ मिलती है तो तब वो अनुभव कराती है, आप अनुभव, तब वो अनुभव स्वरूप उसका एक ही स्वरूप है, परम आनंद स्वरूप, परम परमानंद स्वरूप। और उस परम परमानंद स्वरूप में केवल एक ही है कि मैं अहम ब्रह्मास्मि। ऐसा दिव्य अनुभव, ऐसा दिव्य स्वरूप जो हमारा अपना आपा है, उसे पहचानने के लिए उस आतत्र, इसीलिए कहा गया है को मोह को शोक, वहां कहां मोह, कहां शोक, कहां चिंता, केवल ये शोक मोह चिंता भय जरा व्याधि आदि आदि जो भी कष्ट हैं नारायण, वो किस पर हैं, बोले ये तो केवल ये प्रपंच से भासी जो जगत है, इंद्रिय प्रपंच है, इनका जगत कार्य रूप जगत है, इसमें ये सब हमें भास रहा है। इसलिए आइए, हम सब के जीवन का जो परम लक्ष्य है, जिसके लिए हमें, मैं कई बार कहती हूँ, अपना जो लक्ष्य है वो आनंद की प्राप्ति का है। तो आनंद कहाँ है, आनंद दूसरे से जो प्राप्त होता है वो आनंद आनंद नहीं होता, आनंद तो स्वगत है, अपने आप में है। इसलिए उस आनंद के साथ, स्व के साथ जब तक वृत्ति मिलेगी नहीं, तब तक आनंद की अनुभूति होगी नहीं। इसलिए स्व के साथ जोड़ने के लिए कभी कर्म का आश्रय लेकर केवल वृत्ति कर्म में रहे सो बात भी नहीं, केवल वृत्ति उपासना में लगी रहे तो जो वृत्ति निरंतर उपासना में लगी रहती है वो वृत्ति क्या होता है, माने कर्म में रही तो जड़ता में रही, उपासना में रही तो मनोराज में रही, मन के राज्य में, मन के सुख में, मन की स्थिति में रही, मनोराज में रही। परंतु ये मनोराज में रहने के भी इसके अंदर भी वो दिव्य जो ज्ञान है वो उस सुख से वो वंचित रह जाता है। उपासना में लगे लगे मन के द्वारा उसको सुख की प्राप्ति होती है। उसने भगवान की ईश्वर की उपासना की, उसे बड़ा सुख मिला, मन को सुकून मिला, केवल मन को। तो यह भी बहुत समय तक रहने वाला नहीं है, इसलिए कुछ काल तक, कुछ समय तक उपासना, इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है इसमें भी उपास्य और उपासना। उपासक जब तक उपास्य के साथ रहता है, मनोराजजन्यक सुख मैंने ऐसे बताया जैसे कि लोहा आग के अंदर है और धीरे 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 अग्नि का गुण, अग्नि का रूप लोहे के अंदर उतर आया, और जब तक लोहा आग के संग में रहा तब तक वो धीरे धीरे अपने नाम रूप को मिटाकर अग्नि के समान नाम रूप वाला बनकर रहा, और धीरे धीरे अग्नि के संग से जैसे अलग हुआ तो लोहा पूर्वत रूप में आ गया, वही काले का काला, और उसका वो रंग और रूप जो अग्नि का था वो समाप्त हो गया, अपने ही रंग रूप में आ गया। उसी तरह से उपासना की स्थिति ऐसी है कि जिसमें उपासक और उपासना का अंतर बना रहता है। उपासक जब तक अपने उपास्य के समीप रहता है तब तक उसके अंदर अपने उपास्य का रूप और गुण धीरे धीरे उस उपासक के भीतर आना स्वाभाविक है, और वह धीरे धीरे जब उपासना के द्वारा उपास्य के रूप गुण स्वभाव उसके अंदर चला आता है, ऐसा चला आता है नारायण, कि आद्य गुरु शंकराचार्य के जीवन की एक घटना है कि उनके शिष्य में एक पद्म पादाचार्य हुए। पद्म पादाचार्य ऐसे थे जो पढ़े लिखे तो बहुत नहीं थे और गुरुदेव की सेवा में बड़ी एकनिष्ठ भक्ति थी, और आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के जीवन की एक घटना है कि एक बार एक तांत्रिक कपाली उनके पास आया और उसे अपने मंत्र की सिद्धि के लिए, अपनी साधना की सिद्धि के लिए किसी महाराज का सिर चाहिए था, बलि चाहिए थी। तो उसने सोचा कि शंकराचार्य से बढ़कर के कौन हो सकता है, यदि ये इनकी बलि मिल जाए तो मेरा कार्य सिद्ध हो जाए। पद्म पादाचार्य जी महाराज उस समय स्नान करने के लिए सरोवर में गए हुए थे, तालाब में गए हुए थे, क्योंकि स्नान करते करते उनका हृदय गुरु भक्ति में था, उनका मन गुरु भक्ति में था, गुरु चरणों में था, तो उन्हें ऐसा स्मरण होने लगा, ऐसा लगा उन्हें कि जैसे मानो उनके गुरुदेव उन्हें याद करें, उन्हें कोई गुरु पर विपत्ति आई है। जैसे उन्हें ये आभास हुआ तो वो सरोवर के ऊपर चल पड़े, ऐसे चले जैसे उनका पांव कमल के फूल के ऊपर रखते हुए वो जा रहे, इसलिए उनको कहते हैं पद्म पादाचारी। तो उस पर चलकर के वो जैसे पहुंचे तो इतने में वो कपाली तांत्रिक जैसे बलि चढ़ाने के लिए हाथ में खड्ग लेकर खड़ा था, और उनके इष्ट थे नरसिंह भगवान, गुरु भक्ति थी और नरसिंह भगवान का इष्ट था। तो नरसिंह भगवान का जो आवेश रूप है उन्होंने जैसे ये देखा तो ऐसा आवेश उनको नरसिंह भगवान का आया कि उन्होंने उस खड्ग को लेकर के ही उस कपाली को समाप्त कर दिया और भगवान शंकराचार्य की रक्षा हो गई। तो ये उपासक के ऐसा जोश, ऐसा क्रोध, ऐसा आवेश, ऐसी उत्तेजना आई कि यदि वो उत्तेजना न होती, वो आवेश न होता, वो क्रोध न होता तो वो उसको समाप्त नहीं कर सकते थे। तो ये सब उनके अंदर ये जोश, ये आवेश, ये क्रोध कहां से आया? बोले वो उपासना उनकी ऐसी थी, नरसिंह भगवान के उपासक थे। तो कहने का अर्थ मेरा ये था, उपासक के अंदर उपास्य का गुण स्वभाव तो सहज रूप से आ जाता है, धीरे धीरे आता है, परंतु याद रखना ये स्थायी नहीं, ये हमेशा हमेशा रहने वाला नहीं। कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद वो धीरे 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 अंदर, उसके अंदर में जैसे ही उपासक उपास्य से अलग होगा तो अलग होने के साथ ही उसका ये गुण स्वभाव कर्म, इसलिए इसको भी क्षणिक सुख कहा गया है। ये भी शाश्वत स्थिति नहीं है, शाश्वत सुख, शाश्वत ज्ञान का सुख तो किसमें है? बोले केवल 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 वो केवल ज्ञान में है। इसलिए इसको भी नित्य सुख नहीं कहा, उपासना का जो सुख है वो नित्य शाश्वत सुख नहीं है, इसलिए उसको भी नित्य शाश्वत नहीं माना गया है। तो इस प्रकार जो लोग उस नित्य सुख की, नित्यानंद की, उस नित्य प्राप्त होने वाले आनंद की, सुख की चाहना करने वाले हैं, उन लोगों के लिए कहा गया है कि वह उपासना और कर्म को समुचे साथ साथ रखते हुए, इन दोनों को त्याग करके नहीं, साथ साथ चलते, कर्म भी चले उपासना भी चले, पर ये कर्म उपासना में ही ठहर मत जाओ, इन दोनों को साथ रखते हुए, कहीं इनका विरोध नहीं है और कर्म और उपासना का त्याग नहीं है, कर्म उपासना का समुच्चय करते हुए जो दोनों को साथ में रख करके उस ब्रह्म स्वरूप के, स्वस्वरूप के लिए विचार करते हैं और महावाक्य से उसको समझते हैं, वह अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, वही उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए न कर्म का विरोध है, न उपासना का विरोध है, न अविद्या और विद्या के रूप में, संभूति असंभूति के रूप में, इसको समझ करके इन दोनों को चलने दो। कर्म भी करो, उपासना भी करो, और कर्म उपासना के साथ साथ जो आपका स्वरूप है उसको समझो, उसे पहचानो। उसकी पहचान के लिए हमारा लक्ष्य न कर्म है न उपासना है, हमारा लक्ष्य तो ज्ञान है, आत्मज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है। इसलिए कर्म को लक्ष्य मत बनाओ, उपासना को लक्ष्य मत बनाओ, आपका जो लक्ष्य अध्यात्म स्वरूप है वो आपका लक्ष्य है। इसलिए कर्म उपासना में अटकना नहीं है, अटक गए तो बात गलत हो जाएगी। मान लो हम घर से निकले बाजार में कोई सौदा लेने के लिए, बाजार तो तरह तरह का सजा हुआ है, सुंदर सुंदर चीजें लगी हुई हैं, और जिस दुकान में जो चीज सुंदरता के साथ सजी हुई दिखती है हम उसी दुकान में घुस जाते हैं, या घर से सोच के चलते हैं कि मुझे अमुक वस्तु खरीदनी है तो अमुक वस्तु की जो कपड़ा लेना है तो हम कपड़े की ही दुकान में घुसते हैं, पुस्तक लेनी है तो पुस्तकालय में ही घुसते हैं, दवाई लेनी है तो दवाई की ही दुकान में जाकर ठहरते हैं, जेवर लेना है तो जेवर की ही दुकान में हम जाते हैं। बाजार तो बहुत सजा हुआ है, सुंदर सजे बाजार की सजावट को देखकर, सुंदरता को देखकर जो दिख जाता है उसी के अंदर घुसते चले जाएंगे, तो क्या हम कपड़ा खरीद सकेंगे, क्या हम औषधि खरीद सकेंगे, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं क्या वो हम ले पाएंगे। उसी तरह से ये संसार, इसमें कर्म भी है, उपासना भी है, परंतु आपकी का उद्देश्य कर्मोपासना नहीं है, कर्मोपासना से मिलने वाला सुख नहीं है, आपके जीवन का उद्देश्य है शाश्वत नित्य अविनाशी सुख और आनंद को प्राप्त करना। वो नित्य शाश्वत जो सुख है वह अपने स्वरूप में है, अपनी आत्मा की पहचान में है, और उस पहचान को करने के लिए वृत्ति को हमें कहीं अटकाना नहीं है। आपकी वृत्ति कहीं अटकने न पाए, किसी भी प्रकार के किसी प्रलोभन में न आने पाए, लालच में न आने पाए। और प्राय होता यह है कि अज्ञानवश हम प्रलोभनों में आ जाते हैं। बड़े बड़े अच्छे साधक जो अरिमा गरिमा महिमा जैसी सिद्धियों में अटक जाते हैं। इसलिए जो आत्मज्ञानी है, तत्व जिज्ञासु है, तत्व की जिज्ञासा करने वाला पुरुष है, वह किसी सिद्धि के पीछे, किसी भी प्रकार की सफलता के पीछे वो अटक नहीं जाता, वो किसी सिद्धि के प्रलोभन में नहीं आता। क्योंकि उपासना करते हुए सिद्धियां तो जीवन में आ जाती है, ये ईश्वरी उपासना का एक नियम है कि कोई व्यक्ति अपने आराध्य की जब एक निष्ठ भाव से उपासना में लगता है तो उससे उसके जीवन में सिद्धियां उसके आस पास आकर घूमने लगती है। और यदि उसने उन सिद्धियों का आश्रय कर लिया, वो सिद्धियों को जीवन में स्वीकार लिया, उस प्रलोभन से मैं पड़ गया, तो फिर वो सिद्धियां उसे उसके प्रलोभन से लालच में ला करके उसको ऐसा पकड़ लेती हैं कि धीरे धीरे वो व्यक्ति का विनाश हो जाता है, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसकी सफलता से वो समाप्त हो जाता है। इसलिए तप करते थे पहले, आप पुराणों में कथा सुनते हैं कि अमुक ऋषि ने तपस्या की, नर नारायण ने तपस्या की, इंद्र ने उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए उर्वशी आदि अप्सरा को भेज दिया, और ये उर्वशी नामक अप्सरा जब भेजी उनके साथ तो नाना प्रकार के उन तपस्वियों के तप में विघ्न डालने के लिए, प्रलोभन देने के लिए उन्होंने ऐसा अपना ऐश्वर्य फैलाया कि जिस ऐश्वर्य के प्रलोभन में आकर ये दोनों तपस्वी अपने तप से विचलित हो जाए, वो नहीं हुए, वो कथा अलग है। तो इसी प्रकार के अनेक उदाहरण हैं कि ऐश्वर्यादि उपासना से क्या मिलेगा तुम्हें, बोले ऐश्वर्य मिलेगा। और ऐश्वर्य किसको नहीं लुभाता है, किसको अपनी ओर नहीं खींचता है, बोले कोई धीर वीर गंभीर जो अपने लक्ष्य के लिए गंभीर है, जिसके अंदर धीरता है, जिसकी बुद्धि में स्थिरता है, ऐसा धीर गंभीर कोई तत्व जिज्ञासु है जो किसी प्रलोभन में अर्थात ऐश्वर्यादि के प्रलोभन में ना करके केवल केवलो केवल अपने लक्ष्य पर दृढ़ होता है, ऐसा कोई व्यक्ति होता है, उसके लिए ये मार्ग है नारायण, आत्मविद्या का मार्ग है। इसीलिए कहते हैं कि तत्ववेता को, आत्मज्ञानी को, वो ईश्वर के शासन से भी ऊपर उठ जाता है, उस पर प्रकृति अपना शासन नहीं करती है। ईश्वर का शासन अर्थात प्रकृति का शासन उस पर लागू नहीं होता, वो उससे मुक्त हो जाता है। ये बात अलग है कि ईश्वर के शासन में कभी तत्वज्ञानी व्यवधान नहीं पैदा करता है, कभी उसको उल्लंघन नहीं करता है, ये तत्वज्ञानी का स्वरूप है। परंतु ईश्वर चाहे कि मैं उस पर शासन करूं तो वो भी उसके शासन से मुक्त होता है। इसलिए ज्ञानी तत्ववेता जिसे हम ब्रह्मर्षि कहते हैं, आत्मवेता, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता नारायण। इसलिए ऐसी स्थिति हमारी आत्मस्वरूप की है, हम चाहे तो अपनी दृढ़ लगन से वो स्थिति प्राप्त कर सकते हैं जहां प्रकृति भी नहीं पहुंच सकती, प्रकृति भी हमें छू नहीं सकती, हमें डिगा नहीं सकती, हमें गिरा नहीं सकती। अन्यथा प्रकृति कितनी सशक्त समर्थवान है, उसका एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा उदाहरण आप कश्मीर के रूप में देख लो और पिछले साल उत्तराखंड के रूप में देख लो। प्रकृति का कहर, प्रकृति क्या नहीं कर सकती है, ये सोचना हम सबों से परे की बात है। ऐसी शक्तिशाली प्रकृति उस तत्ववेता पुरुष का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, कुछ बिगाड़ नहीं सकती। उस प्रकृति के ऐसे शासन से भी मुक्त वह आत्मवेता, आत्म तत्वज्ञ पुरुष है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वक्तव्य को विराम देती हूँ, शेष कल चर्चा करेंगे।